प्रवचन सार, प्रवचन सुधा भाग दो, लेक्चर नंबर 40। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वर्छायाणं, नमो लोए सौवसाहूणं, सुरसुरनरपतिवंद्यने प्रविनष्टघाति कर्मने प्रणमन करूं धर्मकर्ता तीर्थ श्री महावीर ने वरिशेष तीर्थंकर ने सौ सिद्ध शुद्धास्तित्व ने मुनि ज्ञान दृग चारित्र तपवीर्या चरण संयुक्त ने ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने प्रत्येकने वंदुवळी हो मनुज क्षेत्रे वर्ततारे हंतने अरहंतने सौ सिद्धने नमस्करण करिए रीते गणधरयने अध्यापको ने सर्व साधु समूहने तसुशुद्ध दर्शन ज्ञानमु क्य पवित्र आश्रम पामिने प्राप्ति करूं साम्यनि जे नाथि शिव प्राप्ति बने। आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक ग्रंथ है, उस पर अमृत चंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी हुई है तथा जयसेन आचार्य ने तात्पर्य वृत्ति टीका लिखी हुई है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं वो प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। उसमें से दूसरी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 6 पर हम आ गए, 6। नीचे जो श्रोता समाधान लिखा है वहां से अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। उसके ऊपर का पैराग्राफ दोबारा लेते हैं। एक गुण का रूप दूसरे गुण में होता है, ये बात जल्दी ख्याल में नहीं आती, उसको पढ़ेंगे फिर अपनी भाषा में समझेंगे। देखो चैतन्य भगवान आहा, एक एक गुण एमा अनंता गुण रूप, क्या कहते, एक गुण का रूप उसी द्रव्य के अनंत गुणों में होता है और हरे हरेक का दूसरे के हरेक में, यानी उसका अर्थ क्या, एक एक में अनंतों का रूप होता है। एक गुण का रूप अन्य गुण में, अनंत गुणों में, और अन्य अनंत गुणों का रूप एक एक गुण में। ए पण पूर्ण रूप छे, वो थोड़ा सा रूप आया ऐसा नहीं, पूर्ण रूप। ज्ञान में अस्तित्व रूप थोड़ू छे एम नहीं, यानी ज्ञान का अस्तित्व तो परिपूर्ण अस्तित्व है उसका, ए अस्तित्व नु रूप अने बीजा अनंत गुण रूप गुणनु रूप पूर्ण छे, ए वस्तु पूर्ण छे, गुण पूर्ण छे अने बीजा गुण मा तेनु रूप पण पूर्ण छे, क्योंकि एक एक गुण संपूर्ण प्रदेशों में व्याप्त है। तो कहते एक का 47 शक्ति के प्रकरण में गुरुदेव ने ऐसे बहुत सारे एक गुण और दूसरे गुण में निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया, ये रूप वाली बात बताई, बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने बताए, स्टार्टिंग में उन्होंने बताए। तो कहते हैं कि ये बीजा गुण में तेनु रूप पण पूर्ण छे, एवो जे ज्ञान स्वभाव, अकेले अकेले ज्ञान गुण की बात नहीं है, ज्ञान स्वभाव कहने पर ज्ञान है और उसमें सभी अनंत गुणों का रूप उसमें आ गया, तो एमा अनंता गुणनो रूप छे एवं ज्ञान स्वभाव ने कारण पणे ग्रहवाती। जब हम वस्तु का स्वभाव कहेंगे तो किसी एक गुण का भले हम नाम लेंगे परंतु वो पूरा द्रव्य का परिपूर्ण उसमें आ गया। अब ये एक गुण का रूप दूसरे गुण में समझने के लिए फिर दोबारा हम लेते हैं, वही उदाहरण भी हम कर लिया था कि जैसे ज्ञान का अस्तित्व है ना, क्यों है? अस्तित्व गुण के कारण तो निमित्त से मानना पड़ेगा। तो ज्ञान अपने से अस्तित्व है, तो अस्तित्व गुण का रूप उसमें है। नहीं तो एक गुण के लिए दूसरे गुण को निमित्त भी कहते हैं, क्योंकि एक ही द्रव्य में जो अनंत गुण है तो एक के लिए दूसरे को निमित्त है। एक ही द्रव्य में निमित्त नैमित्तिक संबंध दो गुणों में लगाते हैं, क्योंकि ज्ञान का अस्तित्व है तो अस्तित्व गुण के कारण द्रव्य का अस्तित्व है, तो द्रव्य के सभी अनंत गुणों का अस्तित्व है, तो उसमें हम उसको निमित्त से, जिस गुण के निमित्त से या जिस शक्ति के निमित्त से हम कहते हैं। वस्तुत्व गुण में भी जिस शक्ति के निमित्त से, तो निमित्त लगाया ना हमने, द्रव्य के अन्य सभी गुणों के लिए उसका निमित्त बताया। अब यहाँ कह दे कि उसका रूप सभी में है, ये अन्य पद्धति से उसका कथन आ रहा है। देखो कि जैसे अस्तित्व है, जीव का अस्तित्व है, वो ज्ञानमय है, चैतन्यमय है, ये कह रहे हैं। देखो हम सादा उदाहरण लेते हैं कि आप सोने की कोई वस्तु लेने के लिए बाजार में गए, वहां से लेके बैठो, नीचे बैठ। तो आप गए सोने की हार या कुछ आपको लेना था, तो बहुत बारीकाई से सब आपने देखा, क्या डिजाइन कैसा है, क्या है वगैरह, और पैसा देते समय क्या किया? वजन किया। अच्छा, तो वजन किया तो वो पूरा सोने का पीलापना, उसका डिजाइन उसमें है, ये खातरी थी कि नहीं, गारंटी थी कि नहीं? देखो एक गुण का रूप दूसरे में है, ये बात चल रही है। तो हमने तो आपको हार खरीदना था तो बहुत चौकसाई करके बारीकाई से आपने वो डिजाइन पसंद किया, और फिर पैसे देना है तो उसका वजन देखा, परंतु उस समय भी आपको मालूम है इसमें उसके सारे गुण मौजूद है, और पैसे अपने वजनपना के अनुसार दिए, यानी उसमें भी वो सब बातें है। ऐसे ये तो बहुत स्थूल उदाहरण है, परंतु एक एक गुण में अनंत गुणों का रूप होता है, ये बात अपनी कल हुई थी। अभी ये हमारे शोभा बेन ने अमेरिका से पूछा था, उनके वहां कोई सुन रहे हमारे अनिला बेन वहां से, उनके लिए फिर दोबारा विषय निकाला। अभी हम आगे बढ़ेंगे। देखो श्रोता कहते ग्रहण ग्रहवाथी एटले एनो मतलब ज्ञान ने जानवाथी, एम छे पेज नंबर है 6, नीचे का प्रश्न और उत्तर है ने श्रोता और उसका समाधान। पर्याय पोते ग्रहे छे, ग्रहे छे ने जाने छे, एटले एना ऊपर लक्ष्य करे छे, ने स्वभाव ऊपर लक्ष्य करते, स्वभाव में एकाग्र हो जाता है, एने ध्येय बनावे छे, ध्यान ना विषय नु ते ध्येय। देखो लौकिक में जब हम ध्येय ना, आपका ध्येय क्या है, यानी आपका गोल क्या है, इस अर्थ में हम लौकिक में ध्येय शब्द को यूज करते हैं। हमको डॉक्टर बनना है, हमको ये कुछ इंजीनियर बनना है, ये क्या है हमारा एम, एम क्या है, ध्येय। परंतु तो यहाँ ध्येय तो पैसा कमाना है। अच्छा, पैसे की कहाँ बात की, उन्होंने तो मिठाई खाना बोला। पैसे में थोड़ी मिठास है, लड्डू में है। देखो क्या कहते हैं, ध्येय शब्द का अर्थ है जैसे हम ज्ञान का गेय, ज्ञान जिसको जानते हैं उसका गेय, श्रद्धा का श्रद्धेय, ऐसे ध्यान का ध्येय है, जिसका ध्यान किया जाता है उसको ध्येय कहते हैं। तो हमारा ध्येय क्या है और हमारा साध्य क्या है, सपना आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकोगे? हाँ बहुत अच्छा, ध्येय ने स्वभाव, जिसमें हमको एकाग्र होने, जिसका ध्यान करना है और जो हमको प्राप्त करना है, कौन सी सिद्ध दशा, मोक्ष, वो हमारा साध्य है। हम क्या साधना चाहते हैं, तो अतीन्द्रिय सुख या परिपूर्ण सुख जो मोक्ष अवस्था में, इसलिए हम कहेंगे मोक्ष अवस्था सिद्ध अवस्था ये साध्य है, और उसके लिए ध्यान किसका करना है या ध्यान का ध्येय क्या है, तो स्वभाव भाव, यही कह रहे हैं। हाँ नहीं, यही इसीलिए कहते हैं ध्यान का ध्येय कहते हैं, क्योंकि लौकिक में तो हम ध्येय उसी को कहते हैं, हमारा गोल क्या है, हमारा एम क्या है, तो मोक्ष जाना है, पर वो ध्येय की बात नहीं है। मोक्ष का ध्यान करने से मोक्ष प्रकट नहीं होगा, उसको ध्येय ने ध्यान का जो ध्येय है, ध्यान का विषय है, उसको ध्येय कहते हैं। ये लौकिक शब्द अलग है और यहाँ हम उसका सही जो अर्थ निकालना है, जैसे ज्ञान का गेय होता है, ज्ञान जिसको जानता है उसको गेय कहते हैं, और ध्यान का जो विषय है उसको ध्येय कहते हैं। मिथ्यात्व नहीं, उसको तो जैसे उसके ध्येय करने से कुछ प्राप्ति होने वाली नहीं है।
देखो बात ऐसी है, आप किसका किसका किसको ध्येय बना रही है, मोक्ष को, तो मोक्ष ये पर्याय के द्रव्य है, तो पर्याय पर नजर रहने से वो प्राप्त होगी।
और हमारे अभी है भी नहीं है जिसका लक्ष्य करना है। हाँ, जिसने पर्याय प्रकट किए उसके हो सकता है, परंतु वो भी अवस्था है, वो अनादि अनंत।
देखो हमेशा ध्येय त्रिकाली स्वभाव ही होगा, एक समय की पर्याय नहीं होगी,
क्योंकि उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय वाली भले वैसी की वैसी हो रही है, परंतु वो अवस्था है, वो तो पहले नहीं थी, उत्पन्न हुई है। किसमें? देखो देखो, ऐसा मत सोचो आप। मोक्ष का ध्यान करने से, यानी आप पर्याय का लक्ष्य करने से, उनका प्रश्न है पर्याय उसका ध्यान करने से पाप होगा क्या पुण्य होगा मोक्ष का?
धर्म मानना वो मिथ्या,
उसका ध्यान ही नहीं होगा, क्योंकि वो पर्याय है, और पर्याय का लक्ष्य करने से, ये बात नियम सार में आई थी, शायिक संवेदन केवल ज्ञान की भी जो पर्याय है, मोक्ष की पर्याय है, उसका लक्ष्य करने से भी स्वभाव पर्याय नहीं होगी। वहां तो बहुत, यानी शायिक भाव का भी निषेध किया है वहां पर। त्रिकाली जो स्वभाव भाव है, जो एक रूप एक सदृश अनादि अनंत कायम रहने वाला स्वभाव है, उसमें कोई वधघट नहीं होती। अब इसमें मोक्ष पर्याय भी आप कहेंगे वहां कहां वधघट हो रही है, अब सच में देखो तो वहां पर भी वो षडगुणहानि वृद्धि वाला एक एक समय के पर्याय में बात हो रही है, वो पर्याय है बस, इतनी बात लक्षण।
एक मिनट, इतना ध्यान रखना कि मिथ्यात्व कभी होता है कि जब कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के प्रति अपना अहोभाव होना, ये मिथ्यात्व है।
हाँ, वो गृहित
उनके कहने के अनुसार हम चलना, ये मिथ्यात्व है, और जो ये गृहित मिथ्यात्व, और अग्रहित मिथ्यात्व यानी ये शरीर को मैं हूँ ऐसा मानना, ये दो बातें होती। सात तत्वों के बारे में गलत मान्यता रहना, इसको भी मिथ्यात्व कहेंगे। अभी अभी आप मोक्ष को उसके बारे में सोचने की बात कर रहे हैं, और राग है, शुभ भाव है, बंध का कारण है।
और देखिए आपने क्या कहा, मोक्ष का लक्ष्य किया, तो मोक्ष का लक्ष्य करना ये तो राग हुआ उसके बारे में, परंतु उसका लक्ष्य करने से मुझे मोक्ष प्रकट होगा या समय दर्शन प्रकट होगा, अगर मान्यता है वो मिथ्यात्व है। जैसे भगवान की भक्ति करना ये मिथ्यात्व नहीं है, पर वो भक्ति करने से मैं धर्म कर रहा हूँ ये मान्यता मिथ्यात्व है। किसी, क्योंकि राग तो आते रहेंगे ना, शुभ अशुभ भी आते रहेंगे, समय दृष्टि होगा तो भी उसकी शुभ अशुभ राग चलेगी ना, तो राग होना ये मिथ्यात्व नहीं है। राग को कल्याणकारी मानना, उसके कारण मैं बढ़ गया हूँ मानना, वो करते करते संवर प्रकट होगा मानना, ये सब मान्यता है, मिथ्यात्व है। किसी क्रिया का या किसी राग का यहाँ निषेध नहीं है, राग कल्याणकारी है, उससे मेरा धर्म प्रकट होगा, ये इस मान्यता को लेना है, वो मिथ्यात्व है। ये मान्यता वाला दोष लोगों के ख्याल में नहीं आता है। अभी आगे बढ़े हम, देखो क्या कहा नीचे से दूसरी लाइन, पेज नंबर 6, ध्यान ना विषय नु ते ध्येय छे, कौन? स्वभाव। शुक्ल ध्यान नी पर्याय नु ते द्रव्य एटले के असाधारण त्रिकाली ज्ञान भाव ते ध्येय छे, है ना? शुक्ल ध्यान यानी क्षपक श्रेणी में जो आत्मा में ही स्थिर हो गया और अभी केवल ज्ञान लेके उठा, उसको शुक्ल ध्यान कहेंगे, सर्वोत्कृष्ट ध्यान है। वैसे हमारा आपका भी ध्यान चलता है, कौन सा? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान कहते हैं। किसी विषय पर हमारा चलता है ना, दुख रूप चिंतन चलता है, सुख रूप उसमें हम रम जाते हैं, उसका विचार करते करते उसमें खो जाते हैं, वो ध्यान ही तो है ना। आगे बढ़ते हैं, अभी 7 नंबर के पृष्ठ पर। धन्य कहा पांचमा आराना प्राणी ने पन आम समझावे छे। आहा आ पांचमा आरा समझते हो? अभी ये वर्तमान जो चल रहा है काल, चौथे काल में तीर्थंकर हुए थे, कल बात आई थी ना अपने। हाँ, आ रहे ने काल, जैसे ये अपना अवसर्पिणी यानी उतरता हुआ काल चल रहा है। पहला काल उत्तम भोगभूमि का था यहाँ भरत क्षेत्र में। देखो कहीं कहीं कांस्टेंट भोगभूमि है जहाँ हमेशा भोगभूमि होती है, और ये भरत और ऐरावत क्षेत्र ऐसे है जहाँ कालों का, छह कालों का परिवर्तन होता है। विदेह क्षेत्र में हमेशा चौथा काल है। कोई कोई क्षेत्र ऐसे है जहाँ हमेशा जघन्य भोगभूमि है, किसी क्षेत्र में हमेशा मध्यम भोगभूमि है, किसी क्षेत्र में हमेशा ही उत्तम भोगभूमि है। है है, अभी 20 तीर्थंकर जो होंगे विद्यमान, हम कहते हैं आपने तो नाम भी सुने होंगे सीमंदर भगवान ऐसे। नहीं ये तो है, नहीं 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 नहीं, ये सीमंदर वगैरह जो 20 तीर्थंकर है वो एट ए प्रेजेंट 20 जगह 20 है। हमारे जो 24 है वो एक के बाद एक हुए थे, और कल आपने जो हरिवंश पुराण में आगे आने वालों के नाम हमने देखे थे, महापद्मा वगैरह, उनके जो नाम वो आएंगे होंगे एक के बाद एक होंगे। अब जब हम विद्यमान 20 तीर्थंकर, आपने बहुत पूजाओं में भी नाम सुना होगा, या सीमंदर वगैरह आपने सुना, सीमंदर जुगमंदर बाहु सुबाहु संजातक वगैरह, 20 अलग अलग जगह में 20 तीर्थंकर एट ए टाइम है वर्तमान में। ये मिनिमम उतने तो रहेगी ही रहेगी, करते हैं ना। हाँ? बहुत, अरे सीमंदर जिनाले तो बहुत जगह है, बहुत जगह सीमंदर जिनाले ही है। आपने सुना होगा अभी।
हाँ?
दादी को पूछना, वो फटाफट बोल देंगे। हाँ?
दादा को बोलना, वो तो आते हैं।
देखो देखो क्या कहते, ये पांचवा आरा ने पांचवा काल, पहला उत्तम भोगभूमि का यहाँ था, उसके बाद यहाँ पर मध्यम भोगभूमि शुरू हो गए, उसके बाद यहीं पर जघन्य भोगभूमि तीसरा काल जिसको कहने तीसरा आला, फिर यहाँ पर कर्म भूमि की शुरुआत हुई चौथा काल, फिर एक के बाद तीर्थंकर 24 तीर्थंकर। कल बहुत विस्तार देखा है, 2 तीर्थंकरों के बीच में कितना अंतर था वगैरह वगैरह, पहले और दूसरे के बीच में 50 लाख करोड़ सागर, दूसरे और तीसरे में 30 लाख करोड़, इस तरह से हमने देखे थे। 90 होते होते तो 99,99,999 करोड़ सागर हुए थे, और बाकी उर्वरित उसके बीच वाले काल में हुए। तो ये यहाँ एक के बाद एक 24 हुए भरत क्षेत्र में। अभी हमारा महावीर भगवान के निर्वाण के बाद, अभी वो 3 साल पहले हुए थे, उसके बाद यहाँ पांचवा काल चालू हो गया है। अभी हमारा पांचवा काल चल रहा है, इसके बाद छठा काल आएगा, फिर वो प्रलय वगैरह होगा, उल्टा चक्र चलेगा भी। जैसे यहाँ छठा काल तो वहाँ पहला, यहाँ पांचवा था वो दूसरा, चढ़ता हुआ दूसरा, इस तरह से हमको उसको समझना। तो अभी ये पांचवा आरा चल रहा है, अभी तीर्थंकर है ही नहीं कोई, परंतु महावीर भगवान का ही इसको शासन काल कहते हैं। उनके उपदेश के अनुसार ये परंपरा अभी तक चली है, आचार्यों के द्वारा, आचार्य टू आचार्य, और फिर बाद में तो लिखित रूप से शास्त्र भी अभी अवेलेबल है सब। तो पांचवा आराना प्राणी ने पन आम समझावे छे।
एक मिनट में कुछ बोलना चाहता हूँ।
बिल्कुल।
देखो अपने ये पूरे विश्व में 3 कर्म भूमिया है मेन, एक भरत क्षेत्र जिसको कहते हैं, एक ऐशान
ऐरावत,
वही सॉरी ऐरावत, तीसरा विदेह क्षेत्र। यहाँ कर्म भूमियों में ही तीर्थंकर का सद्भाव पाया जाता है। अपने ऐरावत में और भरत में एक के बाद ऐसे तीर्थंकर होते हैं। विदेह क्षेत्र में कम से कम 20 और अधिक से अधिक 160 तीर्थंकर एट ए टाइम हो सकते हैं जिस समय वहाँ होंगे। और यहाँ पर भी भरत में एक ऐसे 5 भरत क्षेत्र है, ऐरावत भी 5 है, तो उनके 5 और ये 5, ऐसे 170 तीर्थंकर एट ए टाइम विद्यमान हो सकते हैं।
मैक्सिमम इतनी संख्या होती है उनकी। जब यहाँ अजित नाथ हुए थे ना अपने दूसरे नंबर के, तब सर्वत्र एक एक ऐसे 170 तीर्थंकर हुए थे। अब आगे बढ़े हम। ये जैन भूगोल नाम की एक पुस्तक है, वो पढ़ना। विदेह को ही महाविदेह कहते हैं, उसको उसका ग्रेटनेस बताने के महा कहते हैं, बस इतना ही। पांचवा आराना प्राणी ने प्रणाम समझावे छे। देखो क्यों, ये कुंदकुंदाचार्य ने जो लिखा है वो कौन से इस पांचवें आर्य में हुए थे ना, और उनके सामने श्रोता कौन थे, चौथे आर्य के, पांचवें आर्य के। तो कहते पांचवें आर्य के जीवों को भी ये बात समझा रहे। देखो आगे क्या कहना चाहते हैं। हाँ, पांचवा आराना प्राणी ने समझावे छे के चौथा आराना भगवान, तारी शक्ति एटली छे प्रभु के ते जारे आत्मा ने सम्य दर्शन में पण कारणपणे आश्रयपणे ग्रहण करियो त्यारे तने सम्यक दर्शन ज्ञान थयु। क्या कहना चाहते हैं, धर्म की शुरुआत कैसे होगी, तो जो हमारा स्वभाव भाव है उसको कारणपणे से ग्रहना है, ग्रहना ने स्वीकार करना है और उसी को जानते रहना है। यानी स्वभाव में एकाग्र होने से ही सम्य दर्शन होगा, स्वभाव में एकता एकाग्र होते होते ही मुनि अवस्था और आगे के गुणस्थान आएंगे, और स्वभाव में एकाग्र होते होते केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। यही पुरुषार्थ है, यही मार्ग है, यही कह रहे यहाँ पर। तो कहते कि तुझे जो सम्य दर्शन हुआ, ऐसा पांचवें आर्य के शिष्य को कह रहे आचार्य, या जिसको भी हुआ है तो उसको त्रिकाली के आश्रय से हुआ है। फिर से यहाँ से पढ़ते चौथी लाइन, त्यारे तने सम्य दर्शन ज्ञान थयु, अने हवे पछी पण, एटले के अत्यारे भरे केवल ज्ञान न हो, पण जारे केवल ज्ञान थशे, अने जेने थयु छे इन पास्ट, तेने पण त्रिकाली ज्ञायकना आश्रय, एटले ज्ञानना आश्रय ते थाय छे। ज्ञान कहने से अकेला एक गुण अलग नहीं निकाला है, पूरे आत्मा को भी ज्ञान कहेंगे। ज्ञायक भाव कहने से पूरा आत्मा आ गया, इसलिए कल ज्ञायक भाव कहने से एक गुण में पूरे अनंत गुणों का रूप है, ऐसे ये विषय निकाला था कल। तो ज्ञान ना आश्रय था, यानी स्वभाव के आश्रय से होता है। वज्र नाराच सहनन छे, यानी जो वज्र वृषभ नाराच सहनन होने का नियम होता है कि जिसको वो श्रेणी चढ़ते हैं उनके वज्र वृषभ नाराच नाम का जो उत्कृष्ट सहनन है, सहनन समझते हैं हड्डियां और उसका जो कोई पेरियस्टम है, उसका वेष्टन वगैरह है, उसकी संधि यानी जॉइंट्स जो है वो कैसे वज्र जैसे होते हैं। वज्र तो ऐसा है कि जो पहाड़ों को भी तोड़ डाले, इतना वो वज्र कठिन होता है। तो कहते कि ऐसे उनके हड्डी होती है, ऐसे मजबूती होती है, और क्षपक श्रेणी जैसा शुक्ल ध्यान वहाँ क्षपक श्रेणी वाला जो है वो ऐसे जीवों के हो सकता है, परंतु ऐसा सहनन है इसलिए सबको मोक्ष होगा ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको शायद मालूम हो या नहीं हो, भोग भूमि में तो स्त्रियों को भी वज्र वृषभ नाराज सहनन होता है, बाकी कहीं पर नहीं, पर उनके गुणस्थान चौथा ऊपर नहीं। भोग भूमि के स्त्री हो या पुरुष हो, वज्र वृषभ नाराज सहनन ही होता है। पहला दूसरा तीसरा, परंतु कर्म भूमि के स्त्री को नीचे के तीन सहनन ही होंगे, इसलिए उनको कभी पांचवें गुणस्थान के ऊपर तो ये भी नहीं होता है। हाँ, अभी तीन सहनन वाले जो पुरुष है वो सातवें तक जा रहे हैं नीचे के तीन, पर स्त्री तो पांचवें गुणस्थान तक ही जा सकती है। देखो उसके बारे में बहुत सारी विशेषताएं हैं भोग भूमि की, वहाँ की आयु कितनी है, हाइट कितनी है, भोजन क्या होता है, वहाँ कल्प वृक्ष से क्या क्या बातें सब मिलती है उनके, वो सब। हाँ, तो उत्तम भोग भूमि वाले सब उत्कृष्टता है, वहाँ पर तीन पल्ले की उत्तम आयु, उत्कृष्ट आयु होती है वहाँ पर, स्त्री की भी और पुरुषों की भी। वो उत्तम भोग भूमि वाला था। कभी कभी नहीं, क्रम से। यहाँ देखो, यहाँ तो कितने कोड़ा कोड़ी सागर, पूरा अवसर्पिणी 10 कोड़ा कोड़ी सागर का है, एक कोड़ा कोड़ी सागर में चौथा पांचवा छठा सब है, और बाकी नौ में कैसे, चार तीन और दो। पहला काल चार कोड़ा कोड़ी सागर तक चला, दूसरा मध्यम भोगभूमि का काल यहीं पर तीन कोड़ा कोड़ी सागर तक चला, फिर दो कोड़ा कोड़ी सागर तक जघन्य भोग भूमि रही यहाँ पर, और जब वो जगन्य भोग भूमि से अभी कर्म भूमि में परावर्तन, तो जैसे अभी हमारे जो चल रहे ना कि जो पर्यावरण में जो कोई चेंजेस हो रहे हैं, अभी ये हो रहा है वो रहे, वो सब आते हैं, ओजोन कम हो गया, आपके समुद्र का पानी बढ़ रहा है, ये सब जो हम सुनने में आते हैं, वैसे तीसरे काल के अंत में कुछ भौगोलिक भी परिस्थितियां ऐसी चेंज होने लगी कि अभी आने वाले कर्म भूमि आने वाले हैं, तो उसका हिसाब बन जाता है। तो उसमें जो कोई डिफिकल्टी जो कुछ लोगों को फेस करना पड़ता है, तो वहाँ 14 कुलकर होते, अभी कल थे कि नहीं आप, वो तो उत्सर्पिणी के कुलकरों की बात आई थी पांचवें काल में, और ये भी बताया था कि आदिनाथ भगवान हुए उसके पहले 14 कुलकर हुए थे। तो किस कुलकर ने क्या क्या सिखाया, वो बहुत विस्तार से बात है, आप जाके वो जैन भूगोल में पढ़ लेना, भोगभूमि वाला प्रकरण निकालो तो कहाँ होती है क्या होती है, वो सब चार्ट के द्वारा उसमें समझाया। आगे बढ़े अभी, तो यहाँ तो पांचवें आर्य के शिष्य को कुनकुंद आचार्य या पांचवें आर्य के आचार्य क्या समझा रहे उसकी बात है यहाँ पर।
आप बार बार इसको पढ़ो उसको पढ़ो ऐसा कहेंगे तो फिर घर का काम कब करेंगे।
हम दूसरी भी बातें पढ़ते कि नहीं पढ़ते, घर का काम करके टीवी देखते कि नहीं देखते। हाँ हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ते कि नहीं, अरे बहुत टाइम मिलता है अपने हॉबीज करने के लिए। देखो वज्र ऋषभ नारा सहनन छे, मनुष्यपणू छे, भगवानी वाणी सांभळवा मळी छे, माटे केवल ज्ञान थाय छे एम नथी। केवल ज्ञान ये जो पर्याय स्वयं से उत्पन्न हुई है, वो किसी सहनन के कारण हुई है, भगवान की वाणी सुनी इसलिए है, ये मनुष्य बिना, क्योंकि मनुष्यों के ही होगा मुनि होकर केवल ज्ञान, तो मनुष्यपना के कारण हुआ कि नहीं, तो इतने सारे मनुष्य है सबको होना चाहिए। देखो इसका उल्टा तर्क करते हैं, जिसको केवल ज्ञान होगा किसको, कहे मनुष्य गति वाले को होगा, पर मनुष्य गति उसका कारण नहीं है, मनुष्य गति मिली इसलिए केवल ज्ञान हुआ ऐसा नहीं है। केवल ज्ञान हुआ आत्मा की अपनी स्वयं के सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से, एम नथी। पांचमा आराना प्राणी ने पण संतो आम कहे छे कि जेने अत्यारे केवल ज्ञान थवानुं नथी एवुं आ काल छे, क्योंकि ये पांचवें काल में यहां भी केवल ज्ञान किसी को नहीं होगा। छता कहे छे के, फिर भी केवल ज्ञान कैसे होता है, उसका उपदेश क्यों दे रहे कहते, अभी तो पांचवा काल है, आप केवल ज्ञान की बात क्यों उठा रहे, ऐसा कोई प्रश्न कर सकता है। हाँ यही कह रहे कि कहते कि अत्यारे केवल ज्ञान थवानुं नथी एवो आ काल छे, छता कहे छे के केवल ज्ञान नी उत्पत्ति नुं कारण आ ज्ञायक भाव छे एम तू निर्णय राखजे। और ये निर्णय सारे जो है ना, वो मिथ्या दृष्टि रहते हुए निर्णय करते करते वो सम्यक तो प्राप्त करेगा, नहीं जब वो होना है जिस काल में होना है तब जाके केवल ज्ञान के लिए हम निर्णय करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। अभी हमारे ज्ञान में नक्की होना चाहिए कि इस पर्याय जो हुई है उसका कारण क्या है, क्या बाह्य किसी सहनन के कारण हुआ है, कोई राग करने से हुआ है, पंच महाव्रत पालने से हुआ है, पश्चाताप करने से हुआ है, हुआ कैसे, ये निर्णय हमें अभी करना है इस अवस्था में, तब जाके समय दर्शन होगा। इन्हें पूरा मैंने बोला अच्छा, उठे से लेकर सिद्ध तक के पूरी सभी एक एक गुणस्थान और उसकी अवस्था अंतर बाह्य स्वरूप का निर्णय हमें इस अवस्था में करने पड़ेगा, तभी जाके समय दर्शन प्रकट होगा। यही कह रहे कि अभी केवल ज्ञान नहीं है, परंतु केवल ज्ञान किसके लक्ष्य से कैसे होता है उसका निर्णय अभी करना पड़ेगा। ये तो पंचम काल के शिष्यों के लिए आचार्य समझा रहे,
इसके बिना समय दर्शन नहीं होगा,
बिल्कुल नहीं होगा। अरे निर्णय ही नहीं होगा तो समय दर्शन का सवाल ही नहीं।
यहाँ पर केवल ज्ञान किससे किससे नहीं होता है ये बात बताई है, और होता है तो सिर्फ अपने स्व स्वभाव को जानने से, उसमें हाँ। लीनता करने से,
यानी वो ज्ञान। आपने ज्ञान जानने तो हो गया कि समय दर्शन
नहीं
है। देखो देखो ये तो आपने सुनो सुनो, इसको जानना कहेंगे पर कैसा जानना कहेंगे, शास्त्र से जाना, शास्त्र से हमने जाना है, सुनकर जाना है, और हमको कहाँ अपने स्वभाव को देखकर जानना है, वो जब निर्णय होगा तो उसी समय समय दर्शन हो जाएगा, तब वो निर्णय पक्का कहेंगे, अभी निर्णय नहीं कहेंगे। समय दर्शन होते उसका निर्णय तक पहुंच गया वो। अभी उसके पूर्व स्टेजेस में पहले सुनेगा उस वही बात सत्य, ये बात उसको अंदर से भाषित होगी, ये सब उसका जो विधि जिसको कहेंगे, क्योंकि समय दर्शन होकर डायरेक्ट एक चलो समय दर्शन हो गया ऐसा नहीं होता, उसके पहले ये सब विकल्प की भूमिका में भी निर्णय की भूमिका होगी ना पहले पहले, यानी निर्णय के प्रति जा रहा है कि यही बात सत्य पहले एक्सेप्ट होगा उसके अपने बुद्धि से, परंतु अभी स्वसन्मुख नहीं हुआ है, तो स्वसन्मुख में क्योंकि जिस ज्ञायक भाव की वो महत्ता कह रहा है, उसकी बातें कर रहा है, वो खाली ऐसे मुंह में बोलने से ज्ञायक भाव होता है क्या? अंदर वो ज्ञायक भाव में स्थिर होने से वो उसका उसकी प्रतीति कब होगी? हाँ, जो स्वभाव में एकाग्र होकर उसका अनुभव होगा तब उसकी प्रतीति कहने में आएगी, तब हम कहेंगे उसका निर्णय हुआ, तब तक उस निर्णय के प्रति चल रहा है उसका।
जैसे अभी हमारी
क्या कहते
हैं,
नहीं ऐसा नहीं कह सकते है। देखो देखो, ये कोई ऐसा जिस काल में तत्व का विचार करता है, जिसको देशना मिली है, वो जिस काल में तत्व के विचार में लीन होता है उस काल में उसके चारों ही लब्धियां होती है, क्योंकि देशना मिल चुकी है ना उसके। ऐसे देशना लब्धि वाली कोई कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, देशना लब्धि जैसे किसी को अभी स्वामी जी को सुना तो 40 साल से देशना लब्धि चल रही है, आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि चारों का मिलकर भी काल अंतर्मूर्त है, क्या पांचों लब्धियों का मिलकर काल अंतर्मूर्त है? तो भले देशना पूर्वभव की भी काम करती जब कहते हैं, वो कब कि जिस काल में उसको स्मरण करके उस पर विचार चल रहा है और वो तत्व विचार में लग रहा है, तब वो प्रायोगिक लब्धि तक की चारों लब्धियां उसके है, तब उसकी क्षोभम लब्धि भी है, समझाने के लिए एक एक क्रम से कहेंगे, परंतु जब होगी तो चारों ही एक एट ए टाइम होगी उसके एक अंतर्मूर्त में। और अगर उस अवस्था में वो आत्मसन्मुख टिका रहा या आत्मसन्मुखता उसकी हो जावे तो करण लब्धि में जाके उसको समय दर्शन हो जाता है।
तो इसके लिए पंचलब्धि का शिविर अटेंड करने का
अभी हो गया ना, अभी क्या अटेंड करेंगे? देखो देखो आगे कब की बात है, 2004 की 5 की तभी की बात, परंतु अभी जनवरी में हुई थी ना पंचलब्धि किसी की। हाँ, तो क्या है, हमने एक बार अटेंड की ना इसलिए छोड़ दिया तब हम भी बच्चे थे। हाँ? क्या कहते हैं यहाँ कहते देव, यहाँ हम पांच महाराणा प्राणी ने पण संतो आम कहे छे के जेने अत्यारे केवल ज्ञान थवानू नथी एवो आ काल छे, छता कहे छे के केवल ज्ञानी उत्पत्ति नु कारण आ ज्ञायक भाव छे एम तू निर्णय राखजे। एने ज्ञायक स्वभाव के लक्ष्य से ही केवल ज्ञान होने वाला है, बाह्य किसी कारण से नहीं, ना सहनन से, ना मनुष्य गति से, ना पांचवे काल चौथे काल से, ना अन्य किसी के। बहु क्रिया करूं, दया पाड़ू, व्रत करूं, भक्ति करूं, एनाथी केवल ज्ञान थाय। अभी केवल ज्ञान की बात छोड़ो, एनाथी समय दर्शन थाय, ये पन बात निकाल देना कहते। आज ये साधु आया था ने, ये राजकोट में कहता था पुण्य है ये छे न केहूं, अरे प्रभु शू कहे, अरे पुण्य जो है, देखो हेय गेय उपादेय ये श्रद्धान की बात है, जानने के लिए सभी तत्व है, सभी तत्व ज्ञान के गेय है, उसकी बात नहीं यहाँ हो रही है, वो श्रद्धान में किस रूप उसको अंगीकार करना है उसकी बात है। अब जो हेय कहते हैं वो तो श्रद्धान में हेय कहा, परंतु आचरण में हेय नहीं कहा है उसको, क्योंकि जब तक वो पूर्ण वितराग नहीं होगा तो उसको उसके तो चलेगा पुण्य परिणाम आते रहेंगे। आपको कोई डॉक्टर के पास गई, उन्होंने वो एप्लीकेशन के लिए कुछ दिया आपको ऊपर से लगाने के लिए, क्या क्या लगाते ना, और एक होती है खाने की दवाई और एक होती है लगाने की दवाई, उल्टा करे तो क्या होगा? वहाँ बराबर बहुत चौकन्ना रहे, वहाँ तो होशियार भी बहुत है ना, परंतु यहाँ जब श्रद्धा की बात आती है तो आचरण में लगाते हैं, आचरण की बात आती है तो श्रद्धा के लेवल पर चले जाते, इसमें गड़बड़ी कर देते। અહીં તો કહે છે નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ, શુક્લ ધ્યાનની પર્યાય પણ વ્યય થાય છે, કેમકે વો પૂર્વ પર્યાય હમ ત્યારે કેવળ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. એસલી હમને પહેલે પઢા થા કેવળ જ્ઞાન કા વો બીજભૂત હૈ, જૈસે બીજ સે વૃક્ષ કી ઉત્પત્તિ હોતી હૈ, એસે કેવળ પહેલે શુક્લ ધ્યાન હુઆ થા ઓર ઉસકે ફલસ્વરૂપ કેવળ જ્ઞાન હુઆ હૈ, તો ઉસકા વ્યય હો ગયા. એટલું જ અત્યારે અહીં સિદ્ધ કરવું છે કે કેવળ જ્ઞાન પરિણમે છે એને અવગ્રહ યહાના ક્રમની ક્રિયાની જરૂર નથી. વો તો જો ક્રમ હૈ વો મતિ જ્ઞાન મેં પડતા હૈ, ઇન્દ્રિય જ્ઞાન મેં પડતા હૈ. અવગ્રહ યહા અવાય ઓર ધારણા ઉસકી ભી વાત હમને વિસ્તાર સે કી થી ઉસ દે. એ તો એક સાથે એકદમ અક્રમે પ્રકટ થાય છે, એક હી સમય મેં હૈ. વહાં તો એક એક જો અવગ્રહ યહા અવાય અંતર્મૂર્ત અંતર્મૂર્ત રહેગા, પરંતુ યહાં તો એક હી સમય મેં ઓર વો તીન કાલ તીન લોક કી સભી લોક અલોક કી સભી દ્રવ્યો કે સભી ગુણો કે સભી તીન કાલ કી પર્યાય કો યુગપદ જાન લેતા હૈ, પ્રત્યક્ષ જાન લેતા હૈ. એ તો એને કેવળ જ્ઞાન, તો અક્રમે એને એટ અ ટાઈમ સબકો જાન લેતે હૈ. જે મતિશુદ્ધ જ્ઞાનમાં સાંભળે પકડે વિચારે નિર્ણય કરે ત્યારે તેને જ્ઞાન થાય. નિર્ણય કરે ની જો અવાય તક પહોંચા ઉસકો નિર્ણય કરે કહા. એ મામા કેવળ જ્ઞાનમાં નથી, કેવળ જ્ઞાનનો ઉપયોગ રૂપ થઈને પરિણમે છે. ભાષા જોયું, દેખો દેખો પહેલે સાંભળે ને તો અવગ્રહ હુઆ, અવગ્રહ હોકર કુછ ઉસને પકડા, પકડે ને ઉસકો કુછ તો જાના ઉસને, ઓર ઉસકે વિચારે ને ઇહા ઉસકે બારે મેં ઉસકો નિર્ણય કે પ્રતિ પહોંચા ને, ઉસકે પ્રતિ અભી ઉસકા વિચાર ચલ રહે ને ઉસ પર ઓર ગૌર સે જાન રહા હૈ વો, નિર્ણય કરે ને અવાય હો જાયેગા. એને નિર્ણય હુઆ તો અવાય તક પહોંચા, વો મોક્ષ વાલા નિર્ણય વો નહીં, તત્વજ્ઞાન કે નિર્ણય કી બાત નહીં હે. એ રેગ્યુલર જો હમને સામને કોઈ ચીજ દેખી ઓર હમને તો આપકો તો હમને દેખતે હી પહેચાન લેતે, પણ દેખતે હમને પહેચાન લીએ ઉસમે ઇતની સારી બાતે હો ગઈ, વો હમે એસા નહીં લગતા કે અરે હમ દેખ રહે હમ વિચાર કર રહે હમ અભી, એસા નહીં હૈ. હમે તો લગતા હૈ હમને ઉસકો એ દેખ્યો પેન તો હમને ડાયરેક્ટ પેન નિર્ણય કર લિયા, ઉસકે પહેલે યે સભી બાતે હોતી હૈ વહાં પર, યે કહે રહે. અંતર્મૂર્ત અંતર્મૂર્ત અભી ઉસમે ભી હમ વિશેષ ડિટેલ મેં નહીં જાયેંગે, ઉસમે ભી વો વ્યંજન અવગ્રહ અર્થાવગ્રહ વગેરે હોતે હૈ. જૈસે આપ કિચન મેં કામ કર રહે તો વો તેલ ઉબલ રહા થા યહાં છીટા પડ ગયા, દિખ રહા હૈ, દિખ રહા હૈ તો દિખતે હી આપકો વો સેન્સેશન શરૂ હોતા હૈ નહીં, આંખો મેં વો ડાયરેક્ટ ગ્રહણ હોતા હૈ, પણ સ્પર્શન ઇન્દ્રિયો મેં વો કોન્ટેક્ટ મેં આયા ઓર ફિર થોડી દેર કે બાદ વો સેન્સેશન હુઆ ઉસકા. મન ઓર આંખો મેં બીચ મેં કોઈ દો નહીં હોતે, ડાયરેક્ટ વો અવગ્રહ હો જાતા હૈ ઉસકા અર્થાવગ્રહ. હા આગે દેખતે હૈ, કેવળ જ્ઞાન ઉપયોગ રૂપ થઈને પરિણમે છે. ભાષા જોઈ, ઉપયોગ રૂપ થઈને પરિણમે છે. જે સ્વભાવમાં કેવળ જ્ઞાન હતું, કે સ્વભાવમાં સામર્થ્ય રૂપ થા શક્તિ રૂપ થા વો એકદમ પ્રકટ હો ગયા, તે ઉપયોગ રૂપ થઈને પરિણમે છે. એને વ્યક્ત હુઆ ઉપયોગ રૂપ, એને ઉસો જાનને રૂપ કાર્ય ચલ રહા, ઉસકા જાનન કા વ્યાપાર કહેંગે ઉસકો, જાનને કા ઉસકો ઉપયોગ કહા. કેવળ એટલે એકલું જ્ઞાન સ્વરૂપ ત્રિકાળ અહેતુક છે, એને ગ્રહવાથી એને સ્વભાવ કો જાનતે રહેને પર્યાયમાં કેવળ જ્ઞાન ઉપયોગરૂપ થઈને પરિણમે છે. સ્વભાવ મેં કૈસા થા સામર્થ્યરૂપ થા, અબ પર્યાય મેં ઉપયોગરૂપ હોકર પરિણમા. માટે ઓર જબ તક વો વ્યક્ત પર્યાય મેં નહીં આતા તો ઉસકા કાર્ય નહીં હો રહા હૈ, તો હમારા ભી સામર્થ્ય તો કેવળ જ્ઞાન પડા હૈ અંદર, તો ક્યો નહીં જાનતે કેવળ જ્ઞાન સે, પર્યાય મેં પ્રકટ નહીં હુઆ હૈ. વ્યક્ત ક્યા હૈ હમારા ક્ષોભસમ જ્ઞાન વ્યક્ત હૈ, ઓર જીતના વ્યક્ત હૈ ઉતના હમ જાનને રૂપ પરિણમિત હો રહે, પણ ઉસકે પીછે સ્વભાવ કિતના હૈ. સ્વભાવ હંમેશા પરિપૂર્ણ હોતા હૈ, સ્વભાવ મેં કોઈ લિમિટ નહીં હોતી હૈ. હમને આપકો વો પોઈન્ટ્સ બતાયે થે યાદ હૈ, દેખો હા અનાદિ અનંત હૈ સ્વયં સિદ્ધ હૈ પરિપૂર્ણ હૈ અસહાય અમર્યાદિત, સ્વભાવ મેં કોઈ મર્યાદા નહીં, નો લિમિટ્સ. તો વો તો સામર્થ્ય રૂપ થે, અભી યે પર્યાય મેં પ્રકટ હોતા હૈ. यदि देखो इतना ही धर्म हो, मोक्ष मार्ग इतना ही, क्या जैसा स्वभाव है कैसा है, परिपूर्ण, मैं ज्ञान स्वभाव भी हूँ, परिपूर्ण है, अनंत गुण है उसमें, वो सब जो हम सभी सीखते आए हैं, अभी उसको स्वभाव को स्वीकार करें, उसी को जानते रहना है, क्योंकि जानना भी हमारा हर समय चल रहा है कि नहीं, कि उसको जरा हैंडल मारना पड़ेगा, अभी जानो जानो, हर एक गुण का कार्य प्रति समय चलता है, क्यों सुशीला बेन, हर एक गुण का कार्य प्रति समय क्यों चलता है, निरंतर परिणमन, तो ज्ञान का भी निरंतर परिणमन चल रहा है, परंतु हमारा ज्ञान कहाँ वेस्ट हो रहा है, पर्याय के बारे में, पर को जानने में, राग द्वेष को जानने में, इसी में अटका हुआ है, और जहां से हमारी सामर्थ्य है प्रकट तो हो रहा है अपने से, पर पूरा जानना कहाँ हो रहा है, पर वस्तुओं का, पर्यायों का, या उसको मैं मानकर उसको जान रहे, खाली जान रहे ऐसा नहीं, उसमें अपनत्व स्थापित करके हम उसको जान रहे, करना क्या था, जो सचमुच मैं हूं उसको मैं रूप से जानना है, कितना सरल है कि नहीं, दुनिया में इतना सरल और कुछ होगा क्या, आप हंसती अरे सरल है उसको कौन सरल बनाएगा यही कह रहे देखो देखो नीचे का पैराग्राफ, माटे तेमने समस्त द्रव्य क्षेत्र काल ने भावनु अक्रमे ग्रहण हुआ थी। अभी केवल ज्ञान कैसे समस्त द्रव्यों को, क्षेत्रों को, काल को, भाव को अक्रम से ने एट ए टाइम युगपद ग्रहण करते ने जानते, अनादि अनंत द्रव्यनु, अनादि अनंत आकाश आदि क्षेत्रनु, अनादि अनंत कालनु, अनादि अनंत एना भावनु अक्रमे ग्रहण थाय छे। क्षेत्र में पूरा आकाश लिया, लोक अलोक सब कुछ, अक्रमे एटले एक समय में साथे ग्रहण हुआ थी, समक्ष संवेदन ने, समक्ष ने प्रत्यक्ष, इन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान ने आलंबन भूत समस्त द्रव्य पर्यायो प्रत्यक्ष ज छे। ज्ञान ने आलंबन भूत एटले के निमित्त त्रण लोक त्रण काल समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव एने आलंबन एटले निमित्त रूपे छे। एने किस किस को जानता है तो कहते हैं उसका आलंबन लेते हैं, उसका निमित्त रूप से वो ज्ञान में वो निमित्त है, ज्ञान के गेय है, उसी को यहाँ निमित्त कहा। ए बधा द्रव्यो जेने निमित्त रूपे छे एने प्रत्यक्ष थई जाय छे, एने सबको प्रत्यक्ष जान लेते हैं, और आत्मा की आत्मा से ही सबको जान लेते हैं, अपने क्षेत्र में रहकर पूरा आकाश द्रव्य को, सब पूरे क्षेत्र को, पूरे लोक अलोक सबको जान लेते, उसके लिए क्षेत्र छोड़ना पड़ा क्या उसको, केवल ज्ञान को, वो अपने आत्म द्रव्य तक ही लिमिटेड है, उसे छोड़ ही नहीं सकता उसको, तो अपने द्रव्य में रहकर पूरे अनंत द्रव्यों को जान लेता है, अपने स्व क्षेत्र में रहकर पूरे पर द्रव्यों के सारे क्षेत्रों को जान लेता है, अपने काल में, अपने ही पर्याय में, एक समय के पर्याय में है ना वो पूरा द्रव्य, और उसके एक पर्याय समय के पर्याय है उसके साथ, तो सबके पर्यायों को जान लेता है, अनादि अनंत सब, खाली वर्तमान के नहीं, भूत भविष्य सब कुछ, और अपने भावों में रहकर सभी के भावों को जान लेता है। ये गुरुदेव के प्रवचन में है, मैंने किसी पुस्तक में भी लिखा है, उनके परिशिष्ट के प्रवचन में आई थी बात। हाँ देखो क्या कहते हैं, ग्रहण करे छे अक्रमे एटले एक समय मां साथे, ये हो गया था ना, निमित्त की बात आई थी, नीचे नीचे प्रत्यक्ष थई जाए छे, नीचे से तीन पांचवी लाइन, अहिया नीचे छद्मस्थ अवस्था मां जाने छे, ए इंद्रिय थी जानतो नथी, पण एना ज्ञान मां इंद्रिय नु निमित्तपणु छे। क्या कहना चाहते हैं आप, समझते इसका अर्थ, अभी आप सुन रही हो तो सुन रही हो यानी जान रही हो, ध्वनि को जान रही हो, शब्दों को जान रही हो, यानी वो सुनना क्या है, जानना ही तो है ना, तो ये जानना हो रहा है वो कानों से हो रहा है ना, तो ज्ञान से, यही कह रहे हैं यहाँ पर, शोषम ज्ञानी पांचों इंद्रियों का उसके है आलंबन है, यानी उसका निमित्त है वहां पर, परंतु जानना वो ज्ञान से ही हो रहा है। यही फिर पढ़ते हैं, देखो इसको किसमें, अच्छा ये यहाँ पर नहीं चाहिए, हाँ निकाल दो निकाल दो, ये अहिया शब्द है ना, वहाँ यहाँ के ऊपर बिंदी नहीं लगती, हाँ ही के ऊपर लेते। देखो नीचे छद्मस्थ अवस्था में जाने छे, यानी हम आप जो जानने वाले जान रहे हैं, ये इंद्रिय थी जानतो नहीं। आप कहीं क्या कह रहे, हम संगी पंचेंद्रिय पांच इंद्रिय और मन से जान रहे हैं ना, तो जो जानने का कार्य हो रहा है वो ज्ञान से ही हो रहा है, ज्ञान पर्याय है वो। तो इंद्रिय थी जानतो नहीं, पण एना ज्ञान में इंद्रिय नु निमित्तपणु छे। ये जो क्योंकि इंद्रिया तो इससे जड़ है ना, शरीर के जो पार्ट एंड पार्सल है, तो कहते कि ये ज्ञान में वो निमित्त है। जैसे आप चश्मे से देखते हो कि नहीं, आपके पास है ना चश्मा, चश्मे से देखते हो कि नहीं तो लौकिक भाषा में, लौकिक भाषा
में लोग बिगड़ जाते
हैं। लौकिक भाषा में अगर किसी को पूछे आप आंख से देखते हो कि चश्मे से, अभी इसकी आध्यात्मिक भाषा छोड़ दो, आप ज्ञान से देखते हो तो मालूम है, परंतु ऐसे भी आंखों से देखना हो रहा है कि कांच ये नहीं चश्मा देख रहा है कि आंख देख रही है, ये हम लौकिक सादी भाषा पूछ रहे हैं आपको। अगर चश्मा ही देखता है तो जरा इसको यहाँ विस्पर रख दो ना, थोड़ा घंटे भर पढ़ने का काम कर दे तो अच्छा रहेगा ना, हम थोड़ा आंख बंद करके नींद ले लेंगे, उसको बता दो तुम पढ़ो। तो यहाँ इंद्रिया निमित्त रूप है अभी हमारे पांचों इंद्रिया, पर कार्य तो हमारे अपने ज्ञान गुण का ही कार्य, ये ज्ञान गुण की पर्याय है, जानने का कार्य हमारे ज्ञान की पर्याय में हो रहा है, वहाँ इंद्रियों का निमित्त पना बनता है, तो हमें तो उसी को सब बहाल कर दे। अरे आंखें ही तो देख रही है, वो हमारा ब्रेन है, वो सबको कंट्रोल करता है, उसके हाथ में सब कुछ है, वो ऑर्डर देता है, वो सब शरीर सुनता है उसकी, ऐसा माना कि नहीं माना। बाकी जाने छे तो ज्ञान में पर्याय है ना, भले वो छद्मस्थ की भी क्यों न हो, पण एने इंद्रियोनु निमित्तपणु छे, एनु लक्ष्य त्यां छे, त्यां जाए छे, एटले त्यां निमित्तपणु छे। अभी यहाँ कैसे, अभी अति इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रियों से अतीत है, इंद्रियों से पार है, डायरेक्ट आत्म प्रदेशों के द्वारा ही जानना चल रहा है, वहां इंद्रियों का कोई भी निमित्तपना भी नहीं है। तो अति इंद्रिय ज्ञान उत्पन्न थवामा कोई प्रकार की अपेक्षा छे नहीं, इंद्रिया तो बनी पड़ी है, क्योंकि वो तो मुनिराज थे, इंद्रियों वो तो हमारे जैसे आप जैसे मनुष्य गति के जीव है, पांचों इंद्रियों के द्वारा जानना चल रहा था, अब ध्यान में आरूढ़ हो गए, केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, अब इंद्रिया वहीं पर पड़ी रहेगी कि क्या होगा उनका, शरीर है तो शरीर तो बना है वहां पर, इंद्रिया तो है, अभी इंद्रिया का काम नहीं है, इंद्रिया क्योंकि जानने का कार्य डायरेक्ट आत्मा से हो रहा है, इंद्रियों का कोई निमित्त वहां नहीं बन रहा है, वो आंख खोलकर बोलेंगे इन्हें देखेंगे भी नहीं किसी को। आ मोक्ष तत्व की श्रद्धा करावे छे, इन्हें केवल ज्ञान का स्वरूप बताकर मोक्ष तत्व की श्रद्धा बता रहे। नव तत्व में केवल ज्ञान मोक्ष छे ने, तो नव तत्व में मोक्ष तत्व नी मोक्ष पर्याय इन्हें केवल ज्ञान केवी हो एनु इन्हें ज्ञान ने श्रद्धान करावे छे। वो तत्व का स्वरूप हमारे ख्याल में आना चाहिए, उसी का सही श्रद्धान कहेंगे। हमने देखा ना सात तत्व को या नौ तत्व को, एक एक तत्व का यथार्थ स्वरूप क्या है, उस संबंधी हमें आगम से सही ज्ञान होना चाहिए, फिर उसके बारे में सही श्रद्धान भी आवश्यक है, पहले जानेंगे बाद में उसको हेय गेय रूप से उसको श्रद्धान भी सही करेंगे। देखो तो केवल ज्ञान पर्याय केवी हो एनु इन्हें ज्ञान ने श्रद्धान करावे छे। अहीं मफतनी वात नथी करता, कोई ने एम लागे कि पंचम काल ना जीव ने केवल ज्ञान नथी, छता आवी वातु करवी, तो कहे छे के इन्हें मोक्ष तत्व केवू होय, केवल ज्ञान तत्व केवू होय, एनी श्रद्धा करावी छे। ये सात तत्व की श्रद्धान ये तो आवश्यक कंडीशन है कि नहीं, सात तत्वों की प्रतीति उसके होनी चाहिए, सच्चे देव गुरु शास्त्र सात तत्व, उसका सही श्रद्धा सही ज्ञान श्रद्धा सब आ गया उसके अंदर, तो उसमें से मोक्ष तत्व की श्रद्धा करा रहे हैं कि उसका स्वरूप कैसा है, वो कैसे प्रकट हुई है, यानी वो मोक्ष तत्व का लक्ष्य करने से मोक्ष तत्व नहीं प्रकट होने वाला है। जिसको हम कहते जीव तत्व में ज्ञायक भाव, उसका लक्ष्य करके उसमें एकाग्र होने से पहले संवर निर्जर और फिर बाद में मोक्ष प्रकट होगा। कारण के एक पंडित एम कहता कि केवल ज्ञान एटले के वर्तमान में जे कोई उत्कृष्ट द्रव्य क्षेत्र कारण भाव ने जाने ए केवल ज्ञान। उनको कहना है कि वो बहुत अधिक जानकार है, ज्यादा ज्ञान का उघाड़ है, अतिशयोक्ति करके उसको केवल ज्ञान कह दिया, ऐसा नहीं है। त्रण काल ने केवल ज्ञान जाने ए बात नहीं, ऐसा वो कहता था। इन्वर्टेड यहाँ पूरा हुआ, उसका क्या कहना है वो यहाँ बता दिया। ए ललितपुर में मड़ा था आ बात इन्हें बेसे नहीं, आहा एक समय में त्रण काल त्रण लोग जाने केम बेसे, समय एक अने जेनी काळनी आदि नथी, द्रव्यनी आदि नहीं, क्षेत्रनी आकाशनी आदि नहीं, द्रव्यनो क्षेत्रनो अंत नहीं, आम क्षेत्रनो अंत नहीं, काळे अंत नहीं अने क्षेत्रे अंत नहीं, ए बधाने अक्रमे एक समय जाने, मात्र वर्तमान मा उत्कृष्ट बधा द्रव्य क्षेत्र काळ भावने जाननारो ते केवड़ी एम नहीं, यानी बाकी सब में एवरेज में से वो ज्यादा जानता है वो केवल ज्ञानी, ऐसा बिल्कुल नहीं। समझानो कहीं त्रीजी साल में 32 वर्ष पहला यहाँ बधा पंडित भेगा थया था त्यारे एक चर्चा चाली हती, एक पंडित ने नौती बेचती धोड़ी पर्याय होय एनी बीजे समय लाल पर्याय पन थई जाए, ए चर्चा चाली हती। परमाणु ने काली पर्याय बीजे समय लाल थई जाए ए स्वतंत्र छे। समझानो कहीं रंग गुण ए परमाणु में कायम रहनारो होवा छता, देखो वर्ण एक गुण है और उसकी काली पीली नीली वगैरह वो उसकी अवस्थाएं है, तेनी वर्तमान एक समय ने पर्याय होय काली अने बीजे समय थई जाए धोड़ी, एने न तो बेचतु एवी चर्चा थई हती। एने उनको वो तो बात ख्याल में नहीं आ रही थी बराबर, एने परमाणु की जो पर्याय हो रही है किसी वर्ण गुण की वो उसमें से हो रही है, किसी दूसरे ने आके उसको जलाया इसलिए वो तो काले का पीला हो गया या सफेद था कागज वो काला हो गया, ऐसी बात नहीं है। वो परमाणु की अपनी अवस्था अपने से अपने में होती है। अही कहे छे के पहले समय होय चार ज्ञान नी अल्प पर्याय अने बीजे समय थई जाए केवल ज्ञान, अभी चार में से एक हो गया आपको पसंद होगा? ए त्रिकाणी अखंडानंद नाथ ने जहाँ अंदर में पकड़ो, कैसे पकड़ना उसको? ज्ञान के द्वारा उसको जानते रहना, उसी को पकड़ना कहते हैं। पर्याय भगवान पूर्णानंद ने जहाँ पकड़ो, पर्याय बताए ना एटले के ध्येय में लीधो ने उसका ध्यान किया, ये उसका अर्थ होता है। वर्तमान ज्ञान ने पर्याय में तेने ज्ञेय बनायो, देखो ज्ञान में ज्ञेय बनाया एक समय में, फिर उसी को हर समय में उसी ज्ञेय को जानते रहा, उसको ध्यान कहेंगे। पूर्ण ज्ञान ने ज्ञेय बनायो, पूर्ण ज्ञान ने स्वभाव रूप, केवल ज्ञान भी पूर्ण है, उसको ध्येय नहीं बनाया है। जैसे मोक्ष पर्याय का लक्ष्य करने से क्या होगा, तो पर्याय ऐसी फालतू चली जाएगी, उसमें तो आपको लाभ कुछ नहीं होने वाला है। एनी पर्याय में तरत ज केवल ज्ञान परिणमे एम कहूं छे। समस्त द्रव्य क्षेत्र काल ने भावनु अक्रमे ग्रहण हुआ थे, अहिया ग्रहण एटले जानतु ग्रहण छे ने, ग्रहण करना ने उसे जानना है, जानतु हुआ थे एम लेव, ऊपर मां पण एम लेव, असाधारण ज्ञान स्वभाव ने ज कारणपणे ग्रहवाते, एटले कारणपणे जाणवाते। आवो मार्ग समस्त द्रव्य क्षेत्र काळ भावनु अक्रमे जाणवू होवाथी समक्ष संवेदन ने एने प्रत्यक्ष ज्ञान ने, समक्ष एटले प्रत्यक्ष अने संवेदन एटले ज्ञान, एने आलंबनभूत एटले निमित्त जे बधा हता ए समस्त द्रव्य पर्याय वो प्रत्यक्ष अच्छे, यानी सभी द्रव्य पर्याय वो प्रत्यक्ष ज्ञान में आ जाते हैं, एटले कि जाने छे, एने प्रत्यक्ष जाने छे। आवो ज द्रव्यनो पर्यायनो केवल ज्ञाननो स्वभाव छे। भविष्यनी पर्याय थई नथी एने पण वर्तमानमां प्रत्यक्ष जाने छे। देखो ये लघुता तो सोट में भी बात आई थी, आचार्य अमृतचंद्र ने बताई थी, प्रत्येक द्रव्य में एट ए टाइम, अभी एक गुण की एक है ऐसा मत लो, सबकी मिलकर हम एक द्रव्य की एक पर्याय समझते हैं, तो कितनी पर्याय होगी, अनादि अनंत पर्यायों में से एट ए टाइम कितनी पर्याय होगी, वर्तमान की एक ही होगी ना, यानी प्रत्येक द्रव्य में उसकी अपनी एक एक वर्तमान पर्याय है। और केवल ज्ञान में, केवल ज्ञान भी एक समय की पर्याय है, परंतु उसमें जानना क्या हो रहा है कि सभी अनंत द्रव्यों के तीनों काल की पर्याय उनमें प्रत्यक्ष हो रही है उसमें, यानी वो कैसे अद्भुत है ना। देखो आप जरा विचार करके देखना इस बात पर, द्रव्य में तो अपनी एक एक पर्याय वर्तमान की है, परंतु केवल ज्ञान की वर्तमान पर्याय में सभी द्रव्यों की, अपने सहित पूरे सभी द्रव्यों की अनादि अनंत सभी पर्याय युगपत एट ए टाइम उनमें जानी जा रही है। ये ज्ञान की विशेषता है, यानी वो कैसा ज्ञान स्वभाव है कि जिसमें इतने जानने के, और वो अपने से हो रही है, किसी अन्य के कारण नहीं, सामने सब हो रहा है ऐसा नहीं, उसमें तो अपनी एक एक वर्तमान समय, परंतु वो तो अनादि अनंत निश्चित है, ये भी उसी में नक्की हो जाता है। अगर निश्चित नहीं होता तो उनकी सभी के भविष्य काल की पर्याय जानी है कैसे कहेंगे, अगर उसमें इफ और बट ऐसा कुछ लगाते, ऐसा होता तो वैसा हो जाता है, निमित्त बदल जाता है तो कार्य बदल जाता है, ऐसा अगर हम कहेंगे तो केवल ज्ञानी ने अनादि अनंत पर्यायों को जाना, ये बात कहां से आई, ख्याल में आती है ना। इसलिए इन सभी बातों का अगर हम सर्वांगीण विचार करके निर्णय होना चाहिए कि केवल ज्ञान क्या हो सकता है, यानी उसमें वो जानना जो हो रहा है, तो हम कहेंगे केवल ज्ञान में सभी की अनादि अनंत पर्याय जानी जाती है। उस बात से ही ये बात सिद्ध होती है कि प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक समय की पर्याय सुनिश्चित है, वो क्रमबद्ध है, यानी आप सर्वज्ञता का निर्णय करो तो क्रमबद्ध सिद्ध हो जाता है, क्रमबद्ध का निर्णय करने जाओ तो सर्वज्ञ की सिद्धि होती है। और ऐसा जब हमारा विचार चलता है तो अपने आप वो अपना ज्ञान स्वभाव को पकड़ लेता है जी, अभी इसको छोड़ना है, ये विचार छोड़ना है, अभी अपने को, ऐसा कुछ नहीं होता है वहां पर, ये सहज प्रक्रिया है। इसके निर्णय करने में जो उस विचारों में जीव तल्लीन हो जाता है तो ऑटोमेटिक सब जो कुछ उपशम वगैरह जो कुछ होना है वो सब होकर उसके सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। फिर वो मैं विकल्प कैसे करूं और कैसे छोड़ू, ये कोई प्रश्न नहीं उपस्थित होते। अभी अपना समय होने को आया, ये अंतिम पैराग्राफ कल पढ़ेंगे। चावाणी के ध्यान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो गुरु। अरविंद
नमो अरिहंताम नमो सिद्धाम नमो आयताम नमो वज्जाम नमो लोये सर्वसामुनि नमो अरिहंताम नमो